ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवद गीता में सब उपदेश जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए वो सब जीव का हित के लिए भगवान बताए। और भगवान कृष्ण जो स्वयं अर्जुन को बताए इस कुरुक्षेत्र तीर्थ में, हम आज भी यदि यथारूप श्रवण करते हैं तो हम अर्जुन जैसे लाभ मिले श्री कृष्ण स्वयं से सुने से, स्वयं सुने से, तो हम एक ही लाभ मिल सकते हैं। वो कैसे संभव है इसके बारे में हम गीता से दो श्लोक का विचार, दो तीन श्लोक का विचार करने से हम इस विषय पर ज्ञान मिल सकते कि भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि इस ज्ञान में जो मैं अभी तुमको कहता हूँ वो ज्ञान सनातन ही है। जैसे श्री कृष्ण का पहला उपदेश था कि जीव आत्मा सनातन ही है, तो ये ज्ञान भी सनातन ही है। और वो ज्ञान जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान किया है वो ज्ञान इन्होंने बहुत 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 पहले भी विवस्वान को बताया। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययान् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरीक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री कृष्ण ने कहा कि इस ज्ञान जो योग के बारे में है, भगवद्गीता है योग शास्त्र, वास्तव में 700 श्लोक में एक अपार ज्ञान का सागर है भगवद्गीता। और यदि हम एक शब्द पर चर्चा करेंगे, यदि हम प्रयास करेंगे पूर्णतया एक शब्द पर कहने, तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि हर एक शब्द में इतने अर्थ है कि सब अर्थों का पाप प्राप्त करना संभव नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवत के बारे में भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थक है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीमद् भागवत कृष्ण तुल्य है, अर्थात कृष्ण से अभिन्न ही है। जैसे कृष्ण वैसे श्रीमद् भागवत भी विभु अर्थात महान ही है, और सर्वाश्रय सबको आश्रय दाता ही है। और हर एक श्लोक में और हर एक अक्षर में नाना अर्थ, अनेक अनेक असंख्य अर्थ ही है। तो भगवद्गीता योग शास्त्र ही है जिसमें जीव भगवान ये दोनों में क्या संबंध है वो ही मुख्य विषय है। पांच विशेष और मुख्य तत्व है भगवद्गीता में, ईश्वर जीव काल कर्म और प्रकृति ये सब तो कैसे परस्पर युक्त होते हैं वो ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में है। तो इस योग ज्ञान भगवान कहते हैं कि एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान, मैं इस योग शास्त्र विवस्वान को बोला था। विवस्वान का मतलब वर्तमान सूर्यदेव, विवस्वान मानवे प्रा विवस्वान मानो को बताए, मानो इनकी पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजाशयो विदुहु, तो इस प्रकार परंपरा में से इस ज्ञान आया है, तो इस प्रकार हमें भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करना चाहिए परंपरा में से। ऐसे कोई भी भगवद गीता का पाठ कर सकते और जो संस्कृत ज्ञानी है, जो संस्कृत जानते हैं, तो हर एक शब्द पर अलग अलग अर्थ समझ सकते, परंतु परंपरा में से इस भगवद गीता ज्ञान प्राप्त होने चाहिए। अर्थात जैसे श्री कृष्ण विवस्वान को बोले, जैसे विवस्वान मनु को बताए, जैसे विवस्वान मनु इक्ष्वाकु को बताए, उस प्रकार हमें गीता का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। तो श्री कृष्ण जो विवस्वान को बोले वो ही ज्ञान, कुछ परिवर्तन नहीं करके वो ही ज्ञान विवस्वान मनु को बताए, और मनु उसी प्रकार यथारूप इक्ष्वाकु को बताए। तो यथारूप का मतलब जो हम मिलते हैं वो हम दूसरों को कहते हैं, उसमें कुछ कल्पना डालना नहीं है, कुछ अपना मत नहीं है और कुछ काटना भी नहीं, सब कुछ बताना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजा श्रेयो विदुहु सकाले नेह महता योग नष्ट परम तप, परंतु महान काल में कुछ लोग जो इस भगवद गीता ज्ञान प्राप्त किया है उसमें कुछ कल्पना अपना मत उसमें डाला, इसलिए धीरे धीरे भगवद गीता का वास्तविक अर्थ, तो उस समय जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताए भगवद गीता का वास्तविक अर्थ इस पृथ्वी में उपस्थित नहीं था, और इसलिए भगवान कृष्ण सैवायं माया तेज योगो प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही तदुत्तम। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चूंकि वो ज्ञान जो था तो अलग अलग अपंडित अयोगी कृत्रिम खेती हुई शिष्यों वो भगवद गीता ज्ञान लेके उसको बदल के भगवद गीता का वास्तविक अर्थ नष्ट हो गया, तो इसलिए मैं आज तुमको अर्जुन को वो ज्ञान वास्तविक रूप में कहता हूँ। तो इस ज्ञान तो नष्ट कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो सच है तो सदैव चिरकाल सच होते, परंतु जब कोई भी इस ज्ञान लेके अपना मत उसमें डालते हैं या उससे कुछ करते हैं और अलग ढंग से कहते हैं, तो वो ज्ञान जो है तो अलग रूप से प्रकट होते, मतलब वो वास्तविक ज्ञान नहीं होते। जैसे यदि कोई बोलते है कि 1+1=2 तो वो सही है, यदि कोई बोलते है 1+1=1.9999999999 वो सही नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती है, और धीरे धीरे दूसरे लोग बोलते हैं 1.9999998 और इस प्रकार 1.9 और कुछ दिन के कुछ महान काल में 1+1=1 तो पूरा गलत हो जाता। तो इस प्रकार धीरे धीरे यदि कोई वास्तविक ज्ञान में कुछ अपना मत डालते या उससे कुछ काटते हैं तो धीरे धीरे वो वास्तविक अर्थ जो है तो पूरा नष्ट हो जाते मानव समाज में। यदि सब भारत निवासी एक वचन से जोर से कहते हैं 1+1=3 तो सही नहीं होगा, 1+1=2 वो सही है। तो आजकल भगवद गीता का ज्ञान लेके बहुत से लोग साधु योगी गुरु स्वामी पंडित विद्वान इत्यादि बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन यदि वो सब जो वे कहते हैं यदि वो भगवद गीता यथारूप नहीं है तो वो गलत होगा। तो इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बताया कि वो ज्ञान जो लुप्त हो गया है इस प्रसंग में, वो ज्ञान नष्ट हो गया इस प्रसंग में, नष्ट का मतलब लुप्त हो गया है। मैं तुमको कहता हूँ, क्यों अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के भक्त है और मित्र है, परम रहस्य है इस भगवद गीता का ज्ञान। इसलिए तो केवल पांडित्य से नहीं या वाग चातुरी से नहीं भगवद गीता ज्ञान समझना संभव ही है, समझना है भक्ति से, भगवान कृष्ण की कृपा से, भक्ति से हम श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। तो इस प्रकार इस भगवद गीता ज्ञान प्राप्त होते हैं। अर्जुन तो सत शिष्य थे, हम अनेक बार इस शब्द सुनते सद्गुरु, गुरु तो सद्गुरु होने चाहिए, यदि गुरु असत हो तो गुरु नहीं है। फिर भी हम इस शब्द सुनते सद्गुरु, और हम कभी कभी लोग से सुनते हैं कि मैं सद्गुरु, सद्गुरु के लिए मैं खोज करता हूँ। तो अर्जुन सत शिष्य थे, यदि हम प्रस्तुत हो सत शिष्य होने के लिए तो भगवान की कृपा से हम सद्गुरु मिलेंगे, और यदि हम धोखाबाजी करना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन का नाम है तो हम एक पक्का धोखाबाजे वाला मिलेंगे गुरु का नाम है, और उसको हम सद्गुरु कहेंगे, हे सद्गुरु सद्गुरु मुझको धोखा दे। कोई ऐसे नहीं बोलते, लेकिन कितने सारे लोग पूरा प्रसन्न है ऐसे धोखा देने वाले कहते हुए गुरुओं से, उनका सब बकवास सुनने से, तुम मंत्र ले लो और मुझको कम से कम 10 लाख रुपया दे दो और 10 दिन में तुम भगवान बन जाएगा। तो ऐसे बकवास बोलने वाले तो गुरु नहीं है, लेकिन कितने सारे शिष्य हो जो आध्यात्मिक जीवन का नाम है ऐसे गुरु के पास जाते, लाख रुपये इतने से नहीं, लेकिन ऐसे बहुत लोग जो एक आजकल एक बहुत जनता से सम्मानित व्यक्ति है, जो उनका सेमिनार सुनने के लिए कम से कम 5,000 रुपया ज्यादा लेते, और उसमें क्या है कुछ आध्यात्मिक नहीं है। कैसे? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब चरित्र बनाना, लेकिन उसमें चरित्र बनाना नहीं है तो कैसे दूसरों को धोखा देना वो ही है, और हास के तो कि श्री कृष्ण भगवान उसमें कुछ नहीं है। भगवद गीता लेके वो बोलते बहुत खुश, लेकिन कि भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान है वो हर एक पन्ना में वो लेके श्री भगवान उवाच, इस विषय पर कुछ नहीं कहना। तो यदि हम भगवद गीता का ज्ञान से लाभान्वित होने चाहते हैं तो हमें अर्जुन जैसे सत शिष्य होने चाहिए। तो हम कैसे अर्जुन के समान हो सकते हैं? हम अर्जुन जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि अर्जुन महान भक्त ही है, परंतु कम से कम हम अर्जुन जैसे ईमानदार होना चाहिए। हमारा मन सरल होना चाहिए, सरल का मतलब मूर्ख जैसे नहीं है, परंतु हमें मन से बहुत युक्ति सृष्टि नहीं करेंगे। जो कृष्ण भगवान कहते हैं हमें यथारूप ग्रहण करने चाहिए, और यही श्रील प्रभुपाद के परम उपहार है इस आधुनिक युग में सब मानव जाति के लिए, कि उन्होंने भगवद गीता ज्ञान यथारूप प्रदान किए हैं, और उन्होंने इनका विशुद्ध चरित्र से सबको देखाया। तो कैसे भगवद गीता का ज्ञान यथारूप अपना जीवन में पालन करना चाहिए, अर्थात वे श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त है, और सबको वाणी कहने से और स्वयं चरितार्थ करके सबको सिखाया तो कैसे भक्ति करना। तो परंपरा में से इस ज्ञान प्राप्त होते हैं, और हमें सत शिष्य होने चाहिए अर्जुन जैसे। सत शिष्य अर्जुन तो केवल हा 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 बोलने वाले नहीं थे। कैसे गुरु से ज्ञान प्राप्त होते हैं इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपात है न परिप्रश्न सेव्य उपदेक्षन्ति थे ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन। हा, तत्वदर्शी के पास जानना चाहिए, मूर्ख के पास नहीं है। और केवल श्लोक सीखने वाले पंडित के पास नहीं है, तत्वदर्शी अर्थात जो सब कुछ अच्छी तरह समझते हैं, उनका चरित्र से प्रकट है कि वो व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठा है। श्रीमद् भागवत में यही शब्द है, कौन योग्य है दूसरों को शास्त्र ज्ञान सिखाने के लिए, गुरु होने के लिए, वो तो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात भौतिक भोग विलासी नहीं है, पूरा ब्रह्म ज्ञान में, परम ब्रह्म में उनकी चेतना लीन है। तो तद्विधि प्रणिपात, प्रणिपात का मतलब षष्ठांग प्रणाम, दंडवत करना, इसका अर्थ ही पूरा विनम्र होना चाहिए। परिप्रश्न सेवया और गुरु सेवा वैष्णव सेवा भी करना चाहिए। और परिप्रश्न अर्थात वो ज्ञान जो हम सुनते हैं तो अलग अलग दृष्टिकोण से हमें पूछना चाहिए, जिससे वो ज्ञान हम पूर्णतया समझ सकते, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान तो साधारण ज्ञान जैसे नहीं है। साधारण ज्ञान हम साधारण बुद्धि से समझते, परंतु इस ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हम असाधारण आध्यात्मिक बुद्धि से ग्रहण करते। तो वो ज्ञान हम मिलते कैसे, वो आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पहले खुद को योग्य पात्र बनना चाहिए, विनम्रता से, सेवा भाव से इत्यादि। तो भगवद गीता में संक्षेप में सब ज्ञान संकलित है, और अन्य शास्त्रों में तो कैसे यथार्थ आदर्श शिष्य होना उसका वर्णन ही है। तो परिप्रश्न तो कही बा भगवद गीता में जब श्री कृष्ण कुछ कहते हैं उसके बाद अर्जुन प्रतिवाद कहते हैं कि हे कृष्ण आप जो कहते हैं मैं नहीं समझती, दोबारा कहो। तो कि भगवान कृष्ण विवस्वान को बताए और विवस्वान मानो को बताए, मानो इक्ष्वाकु को बताए, इस बात सुन के अर्जुन तो नहीं समझते, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण तो समवाय सिक्त है, तो इसलिए अर्जुन ने कहा अपरो भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतान विजाने अंतमादो प्रोक्तवान इति। कृष्ण विवस्वान आपसे बहुत ज्येष्ठी है, मैं और तुम्हारा जन्म तो करीब 120 साल के पहले था, और विवस्वान बहुत 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 पहले मानो को बताए, मानो इक्ष्वाकु को बताए, तो कैसे मैं समझ सकता हूँ कि आप इतने पहले विवस्वान को बताए, क्योंकि उस समय तुम नहीं था, कैसे संभव। तो देखिए कैसे अर्जुन कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है लगते, लेकिन आप ऐसे बोलते हैं तो होता, लेकिन कैसे संभव था, कथा में ही तब भी जाओ, कैसे मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि आप वैसे बोले, मैं नहीं समझता, मेरी बुद्धि के बाहर है, मेरे विचार के बाहर है, कैसे वो संभव था। तो अर्जुन तो कृष्ण भगवान को नहीं बोले कि तुम जो बोलते हो सब बकवास ही हो, मैं तुमको चौके में सदगुरु ढूंढते हो, नहीं कथा में ही था बेजानिया, कैसे मैं समझ सकता हूँ? क्योंकि अर्जुन समझते थे कि श्री कृष्ण योग्य गुरु है, सदगुरु ही है, और सब कुछ जो कृष्ण कहते हैं वो यदि मेरी बुद्धि के अतीत है तो उसका मतलब नहीं है कि वो असत्य है, वो झूठी है। सामान्यतः यदि हम गुरु साधु शास्त्र से कुछ सुनते हैं जो हमारी बहुत ही सीमित बुद्धि में हम ग्रहण नहीं कर सकते, हम विचार करते हैं तो नहीं हो सकता, तो वो हमारा दोष ही है कि हम सब कुछ हमारी बहुत तुच्छ बुद्धि से माप करना चाहते हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान हमारी बुद्धि के अतीत ही है, हमारी बुद्धि बहुत सीमित ही है, हम पूरा विश्व में हमारी स्थिति क्या है, हम छुआ जैसे पीले का जैसे हम बहुत ही बहुत 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 छोटे हैं। तो अर्जुन इस प्रकार नम्रता से श्री कृष्ण को बताया कि जो आप कहते हैं मैं नहीं समझता हूँ, कैसे समझ सकता हूँ मुझको बताए। तो उत्तर में श्री कृष्ण अर्जुन को फिर बताए जो इन्होंने पहले बताया गया कि हम केवल एक शरीर धारण नहीं करते, हम अनेक शरीर, एक से दूसरे अनादिकाल से हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं। भगवान अर्जुन को बताए बहुनी में भी अतीतानी जन्मानी छा बचा जानी थानी अहं वेद सार्वाने नंग थ्वंग वेद परंतपा। हे अर्जुन, मैं पहले बोला था ना कि तुम और मैं और वास्तव में सब तो बहुत जन्म लिया है, तुम और मेरे में यही अंतर है कि मुझे स्मृति है ये सब जन्मों के बारे में, तुम्हारे नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण एक जीव है हम जैसे, जिनमें पूर्व जन्म की स्मृति वो ही विशेष सिद्धि है, नहीं है। श्री कृष्ण और भी बताए अजो भी सन अभ्य आत्मा भूतानम ईश्वरो भी सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठा संभवा में आत्माया कि मैं अजा हूं, अर्थात मैं कभी भी जन्म नहीं लेता हूं, मैं अव्यय आत्मा हूं। ये सब संस्कृत शब्द है, आप प्रयास कीजिए ये सब शब्द का अर्थ समझना, क्योंकि ये सभी शब्द का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अव्यय आत्मा, इसका मतलब श्री कृष्ण का शरीर में कभी भी मृत्यु नहीं है, कभी भी बुढ़ापा नहीं है, कभी भी जन्म नहीं होते श्री कृष्ण का, तो वो ही विचित्र है। इसके बारे में श्री कृष्ण और कुछ भी कहेंगे। तो हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म लेते हैं पूर्व कृत कर्म फल के अनुसार, तो हम जन्म लेते हैं और पहले वो शरीर जो हम धारण करते हैं वो शिशु का रूप में है, चाहे भी मनुष्य के रूप या कुत्ता का रूप या बिल्ली का रूप या पक्षी का रूप, पहले शरीर जो हम मिलते हैं बहुत छोटे ही है, और धीरे धीरे भौतिक प्रकृति का संचालन के अनुसार वो छोटे से शरीर का परिणाम होते हैं और धीरे धीरे छोटे शरीर तो बड़ा हो जाते हैं। जैसे उसके पहले श्री कृष्ण बोले हीनोस्मिन यथा दे है कुमारंग यौवनंग जरा तथा देहांत रापति। तो इस प्रकार हम नया शरीर मिलते, वो नया शरीर छोटा है, धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर पूरा मनुष्य जीवन में पूरा चुष्ट नर शरीर प्राप्त होते। वो चुष्ट शरीर तो धीरे धीरे उसका ह्रास होते हैं, फिर वृद्धावस्था होते, फिर मृत्यु, फिर पुनर्जन्म होते। इस प्रकार हम संसार चक्र में परिभ्रमण करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अव्यय आत्मा हूं, अर्थात मैं अजा हूं, जन्म नहीं लेता हूं किसी आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। किसी जीव तो कभी भी जन्म नहीं लेते, तो सब जीव अजा है। अजा का मतलब कभी भी जन्म नहीं लेते, लेकिन हम जो इस प्रकृति में, भौतिक प्रकृति में अटक गए, तो हम बार बार जन्म लेते। वो केवल भौतिक परिप्रेक्ष्य है, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य हम कभी भी जन्म नहीं लेते। तो श्री कृष्ण बार बार जन्म लेते हैं, परंतु उनका जन्म हमारे जन्म जैसे नहीं है, क्योंकि वे इस भौतिक प्रकृति के बीच में प्रकट होते। कैसे? आत्मा माया, अपनी शक्ति, अपनी इच्छा, अपनी कृपा से भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते। हम चुना नहीं करके भौतिक प्रकृति के सख्त नियम के अनुसार हम अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं और वो हमारा जन्म है। और श्री कृष्ण का जन्म इनकी अपनी इच्छा से, अपनी दया से होते हैं। तो इसके बारे में श्री कृष्ण और भी व्याख्या करते हैं। तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता के, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुनं विनाशयत दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किसलिए भगवान आते? अपनी कृपा से मानव समाज का हित के लिए, विशेषकर साधुजन का हित के लिए, धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए। जब जब धर्म ग्लानी होते हैं, तो पहले बताया गया कि सकाले ने हम हथा, क्योंकि महान काल से पारंपरिक प्राप्त ज्ञान लुप्त हो जाते, इसलिए धर्म नष्ट होते या धर्म ग्लानी, धर्म तो नष्ट जैसे होते हैं, क्योंकि वो सही ज्ञान। तो मानव समाज में यदि उपस्थित नहीं है तो धर्म भी उपस्थित नहीं है, नहीं होगा। तो जब जब ऐसे होते हैं, तब तब भगवान स्वयं आते हैं। इस ज्ञान बताने के लिए और केवल ज्ञान कहना नहीं, वे मानव समाज में ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे धर्म पुनर्स्थापित होते। वो कुरुक्षेत्र में वो युद्ध जो होने वाला था, वो भी श्री कृष्ण की व्यवस्था धर्म स्थापन करने के लिए। तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भूत भारत अभ्युत्थान अधर्म। और कैसे धर्म स्थापन होते हैं? साधु जन का उद्धार करने से और दुष्टों का संहार करने से। भगवान कृष्ण युग युग में प्रकट होते, परंतु उनका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण और भी कहते, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब भगवद गीता में सब उपदेश जो है महत्वपूर्ण ही है। तो और भी कहते हैं श्री कृष्ण, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। तो भगवद गीता है योग शास्त्र। योग का मतलब युक्त हो। तो योग का मतलब क्या? हम अभी अयुक्त है, हम भगवान से भिन्न जैसे है। हम जो जीव है, ममाय वांशो जीवलोक है, जीवभूत सनातन, हमारा सनातन संबंध है कृष्ण के साथ, क्योंकि हम कृष्ण का अंश है। परंतु हम अभी माया से मोहित है, और इसलिए हम अयुक्त जैसे चलते हैं। और उसका फल क्या है? पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम। तो इसलिए हमें मुक्त होना चाहिए। मुक्त का मतलब युक्त कृष्ण के साथ, वो ही परम योग ही है। तो ये सब विषय, कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, तो सब का विचार है भगवद गीता में। तो कैसे मुक्ति प्राप्त होती है? तो इसलिए युक्ति अथवा योग होने चाहिए श्री कृष्ण के साथ। और कैसे वो मुक्ति युक्ति होती है? तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग योग्यांग प्रयास करते युक्त होना। तो सबसे आसान उपाय और श्रेष्ठ उपाय इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। जो व्यक्ति तत्वतः अच्छी तरह समझते कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य ही है, वो व्यक्ति केवल उसी तत्व पर तत्वतः पूर्णतया समझने से मुक्त होते, पुनर्जन्म नहीं लेते। और किस प्रकार मुक्त होते हैं? तो सामान्यतः मुक्ति शब्द से लोग समझते ब्रह्मलीन होना, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना। परंतु भगवद गीता जो सर्वोच्च ज्ञान है, श्री भगवान उवाच, भगवान जो सबसे बड़ा पंडित है, जो योगेश्वर है, सबसे बड़ा योगी है, तो उनका विचार जो परम सत्य ही है, उनका विचार में मुक्त होना का मतलब श्री कृष्ण के पास जाना, श्री कृष्ण में लीन जाना नहीं, या ज्योति में लीन जाना नहीं, कृष्ण के पास जाना है। तो इस प्रकार भगवद गीता में सब प्रकार का ज्ञान है, सब प्रकार का ज्ञान जो हमें प्राप्त होना चाहिए और सब कुछ जो जिससे हमारा सनातन कल्याण नहीं होते, तो वो तो ज्ञान है परंतु वो तो सही ज्ञान नहीं है। जैसे आजकल कंपटीशन में अलग अलग प्रश्न होते तो शायद एक प्रसिद्ध क्रिकेटर का बैटिंग एवरेज क्या था और किसी राष्ट्र का राजधानी का क्या नाम है, तो ये सब व्यवहारिक ज्ञान है इस भौतिक संसार के बारे में, लेकिन वो तो सच ज्ञान नहीं है। सच ज्ञान है वो ज्ञान जिससे हम जन्म मृत्यु से मुक्त होंगे, वो ज्ञान भगवद गीता में है। इसलिए भगवद गीता का ज्ञान वो सच ज्ञान ही है, पूर्ण ज्ञान ही है, वो ज्ञान ही है, वो ही ज्ञान है और सब कुछ तो ज्ञान का नाम से ही चलते ही, परंतु वास्तव में तो ज्ञान नहीं। जैसे ज्ञान है सच है कि भारत देश का राजधानी है नया दिल्ली, तो वो सही है, लेकिन हजार साल के पहले वो सही नहीं था, क्योंकि भारत जैसे आज भारत देश संगठित है तो हजार साल के पहले नहीं था, और हजार साल के बाद क्या होगा मालूम नहीं लगते, तो हजार साल के बाद भारत जैसे आज मानचित्र में हम देखते हैं भारत ऐसे है तो हजार साल के बाद नहीं होगा। और देश तो नहीं रहेगा क्योंकि पूरी पृथ्वी इस भूमंडल तो नहीं रहेगा, भूतवा भूतवा प्रलियत है, सब कुछ का प्रलय होता। इसलिए ऐसा कहना कि नया दिल्ली भारत का राजधानी है वो आज वो सही है, लेकिन कल होगा कि नहीं वो निश्चित तो नहीं है। निश्चित है कि एक दिन आएगा जिसमें भारत का राजधानी है नया दिल्ली, तो वो सही नहीं होगा, इसलिए वो ज्ञान अपूर्ण है। और इस प्रकार सब भौतिक ज्ञान अपूर्ण काल से सीमित है, पूर्ण ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान जो हम भगवद गीता में मिलते हैं। सब ज्ञान जो भगवद गीता में है वो तो आध्यात्मिक नहीं है, कुछ है जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवेश ही है या आध्यात्मिक ज्ञान का पोषण है या समर्थन ही है। जैसे भगवद गीता में वर्णाश्रम धर्म के बारे में कुछ मंतव्य ही है, तो वो भौतिक संसार के बारे में है, परंतु वो वर्णाश्रम धर्म वो रीति जो है वो भगवान कृष्ण की सृष्टि है जिससे मानव समाज में सभ्यता से लोग रह सकते हैं और वो स्थिति जो उससे वर्णाश्रम धाम पालन करने से उस स्थिति जो श्रेष्ठ होते हैं वो अनुकूल है आध्यात्मिक जीवन पालन करने के लिए। चातुर्वर्ण्यं माया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः, ये चातुर्वर्ण वो मेरी सृष्टि है, श्री कृष्ण कहते हैं गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के अनुसार। इस श्लोक में श्री कृष्ण जन्म के अनुसार नहीं कहते, तो वो भौतिक ज्ञान है, परंतु वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे हम कुछ मार्गदर्शन मिलते हैं तो कैसे इस भौतिक संसार में रहना, जिससे हम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सकते। और जैसे सब ज्ञान जो भगवद गीता में है, उस वर्णाश्रम पद्धति के बारे में अन्य शास्त्रों में और विस्तार रूप में वर्णन होते हैं, तो मैं मुक्ति के बारे में अभी कुछ बोला था। और आध्यात्मिक जीवन क्या है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास, वो सामान्यतः लोग इस प्रकार समझते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, तो वो सही है लेकिन पूरा तो नहीं है। मोक्ष तो आध्यात्मिक मार्ग का चरम स्तर नहीं है, परंतु कि हमें इस भौतिक संसार का बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसे विचार तो आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश ही है। तो क्यों हम उत्साही होंगे आध्यात्मिक जीवन पालन करना, ये सब भागवत गीता ज्ञान का क्या आवश्यकता है। संसार में बहुत कुछ है हमारा भोगने के लिए, बहुत कुछ सुंदर वस्तुएं है हमको देखने के लिए, और म्यूजिक भी है जिससे हम सुख मिलते हैं, और तमाशा भी देखने है जिससे हम सुख मिलते हैं, और सुंदरी रमणी से हम यौन जीवन का अनुभव कर सकते हैं। तो क्यों हम मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे, तो इसके बारे में दो शब्द में भगवान श्री कृष्ण इस पूरा भौतिक संसार की स्थिति के बारे में बताए। दुखालयम शाश्वतम, ये भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, परंतु भौतिक संसार के बारे में यही समझने से हम प्रेरणा मिलेंगे आध्यात्मिक मार्ग पर जाने के लिए। दुखालयम शाश्वत, दो शब्द में श्री कृष्ण पूरा भौतिक संसार का वर्णन करते, सब इतिहास जो था, इतने कितने बड़े बड़े लोग आए हैं गए हैं भारत में, कितने बड़े बड़े लोग, औरंगजेब, अकबर और सिकंदर, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, तो कितने सारे लोग आए हैं और गए हैं, यही इतिहास ही है। और भूगोल भी है, भारत देश है, उसके पास पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, ईरान है इत्यादि, और पूर्व प्रांत में बांग्लादेश है, म्यांमार है, ऊपर नेपाल है, चीन है, तो यही भूगोल। और साइंस भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये सब विषय लेके बच्चे स्कूल में पढ़ते और इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होते। तो दो शब्द में भगवान कृष्ण सब इतिहास, भूगोल, साइंस, ह्यूमैनिटीज सबका पूरा वर्णन करते। दुखालय अमशाश्वत, इस भौतिक संसार दुखमय ही है, तो इसलिए भौतिक संसार के बारे में इतना सीखने का जरूरत नहीं है और अशाश्वतम, कोई यहां ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। स्थावरानम हिमालय, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थर्व अचल वस्तुओं में हिमालय जो प्रतीक है वो कृष्ण की अभिव्यक्ति। तो हिमालय जो स्थावर है, अचल है, तो हिमालय पर्वतों का विनाश भी होगा, इस पूरे संसार का विनाश होगा। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि इस भौतिक संसार जो हम सामान्यतः हमारा भोगने के लिए है ऐसे हम विचार करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो भावना बिल्कुल विपरीत ही है। और ऐसे ही समझने से हमें कुछ कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए भगवान इनकी कृपा से हमको ऐसा बताते हैं। आत्म माया या इनकी कृपा से वे आते धर्म स्थापन करने के लिए, और उच्च धर्म में यही समझना चाहिए कि सब कुछ इस भौतिक संसार में दुखमय है और स्थाई ही अस्थाई ही है। तो इस ज्ञान लेके हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। जब तक हम विचार करते हैं कि इस भौतिक संसार बहुत अच्छा ही है तो हम मर जाएंगे, तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें जब तक यहाँ हो तब तक हमको भोगना पड़ेगा सब कुछ, एंजॉय कोका कोला, एंजॉय जो सब कुछ जो है, एंजॉय करो, भोग करो। वो नास्तिक चार्वक का दर्शन है, विणं कृत्वा घृतं पिबेत् यावत् यावत् जीवत सुखम जीवत भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनः आगमनो भवेत्। चार्वक का विचार है कि घी, घी खाओ, घी का स्वाद इतना इतना अच्छा है, उसमें इतना दम है कि जैसे तैसे हो खरीद लो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो किसी दोस्त से पैसा लेके, ऋण लेके घी खरीद लो या चोरी करो, जैसे तैसे हो घी खाओ। तो चोरी करना, ऋण लेना जिसमें वापस देना पैसा का कुछ भी सोचना नहीं है, ये सब पाप ही है। चार्वक कहते हैं तो पाप से डरो मत, वो सब मूर्खों की बात है, मृत्यु ही मृत्यु ही है, उसके बाद कुछ नहीं होगा, कोई वापस नहीं आते, कोई वापस आते, कोई वापस नहीं आते। तो जो भी करने चाहते हैं करो, और मेरा सलाह है घी खाओ। तो ये नास्तिक दर्शन ही है, हम वापस आएंगे और यदि इस जीवन में हम पाप करेंगे तो उसका फल हम मिलेंगे, और सब तो पाप करते इसलिए दुखावे हम। पाप का फल है दुख और पुण्य का फल भी दुख है, क्योंकि ये दुखालय ही है। स्वर्ग में इंद्रादि देवताओं भी दुखी है, सुखी नहीं है, इनके मन में चिंता ही है, सब कुछ है इनके पास इंद्रिय सुख भोगने के लिए, फिर भी क्योंकि मन में चिंता है कोई सुखी नहीं है। तो यदि हम ये दो शब्दों दुखालयम और शाश्वतम समझ सकते तो हम उत्साही होंगे भगवद गीता ज्ञान सुनने के लिए, नहीं तो हम उत्साही नहीं होंगे। आप सब उत्साही हैं, इसलिए आप सब यहाँ आए हैं। तो इस विचार के अनुसार हमारा जीवन बीतना चाहिए, नहीं तो हम जनवा जैसे होंगे, द्विपद पशु जैसे होंगे। तो दुखालयम अशाश्वतम, इस भौतिक संसार दुखमय है तो सुखमय नहीं, नहीं तो सुखी है। हम जीभ से सुख मिलते, आंखों से अलग अलग सुंदर चीजों देखने से हम सुख मिलते, हम कानों में से म्यूजिक सुनने से हम सुख मिलते, ये सब इंद्रिय सुख दुख का कारण ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श जा भोगा दुख योन आद्यंत नथेषु रमते भूता। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस सभी प्रकार का इंद्रिय सुख दुख का कारण ही है। इंद्रिय तृप्ति से अतृप्ति होती है, उसमें आत्म सुख नहीं है, इंद्रिय सुख वो शब्द है इंद्रिय तृप्ति, लेकिन वो केवल एक शब्द है, क्योंकि इंद्रिय सुख से हम कभी भी पूरा तृप्त नहीं हो सकते। जितने भी इंद्रिय सुख मिलते तो फिर भी हम हृदय में खाली जैसे अनुभव करते, क्योंकि वो आत्म सुख नहीं, वो मायिक सुख है। और इंद्रिय सुख से हम इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए हम पाप करते, इसलिए उसलिए भी वो इंद्रिय सुख प्राप्ति का प्रयास दुख का कारण है। इसलिए नथेषु रमते बुद्धः, बुद्धिमान लोग उसमें आनंद नहीं लेते, नहीं लेते। तो हमें बुद्धिमान होने चाहिए। अर्जुन तो पहले मूर्ख जैसे प्रस्ताव किया है, नयोत्स्य इति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो मूर्ख जैसे कृष्ण को बताए, तो वो कृष्ण अर्जुन को वास्तविक बुद्धि प्रदान करने के लिए भगवद गीता बताए। तो ये भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं होगा जब तक हमारी बुद्धि इस प्रकार है कि इंद्रियों के द्वारा मैं सुखी होऊंगा। वाजुन का दोष था, परोक्ष रूप से अर्जुन का प्रयास था सुखी होना, लड़ाई नहीं करने से। अलग अलग प्रस्ताव किया था, परंतु वास्तव में अर्जुन का उद्देश्य था कि लड़ाई नहीं करने से मैं संतुष्ट होंगे, मुझे क्या करना श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार, वो अर्जुन का उद्देश्य नहीं था। इसलिए उसकी बुद्धि तो नष्ट हो गई। तो अर्जुन को उनका वास्तविक बुद्धि फिर स्थापन करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान बताएं, और अंत में अर्जुन स्वीकार किया कि श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने भगवद गीता ज्ञान प्राप्त किया है। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसाद मायाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनान्तव। अर्जुन ने कहा कि भगवद गीता का अन्वय, भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने से खाली कानों में से नहीं, बुद्धि से नहीं, हृदय में भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करके अर्जुन भगवान कृष्ण को बताया कि वो मोह जिससे मैं आपका वचन पालन करने के लिए तैयार नहीं था, वो मोह नष्ट हो गया है। और स्मृति अर्थात वो स्मृति की मैं आपका समर्पित सेवक में हूं, वो बुद्धि मैं पुनर् लाभ किया हूं। कैसे? त्वत् प्रसादात् मया अच्युत, आपकी कृपा से अच्युत। इस श्लोक में एक भगवान कृष्ण को संबोधन करते हैं अर्जुन अच्युत। अच्युत नाम का अर्थ है जो कभी भी मोहित नहीं होते। अर्जुन तो जीव है तो मोहित हो सकता, अर्जुन साधारण जीव है, कृष्ण भगवान ही है। और भगवान कृष्ण तो कभी भी भौतिक माया से मोहित नहीं है, इसलिए उनका नाम है अच्युत। अच्युत की कृपा से अर्जुन की बुद्धि जो च्युत हो गया तो पुनर् स्थापित हो गया। तत्प्रसाद मया च्युत नष्टो मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसाद मया स्थित, मैं अभी स्थित हूँ, मेरे सब संदेह चले गया और मैं प्रस्तुत हूँ आपका वचन पालन करना। तो हमें भी भगवद गीता श्रवण करने के पश्चात अर्जुन जैसे पूरा प्रस्तुत होने चाहिए श्री कृष्ण का वचन पालन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।